दोपहर के 12 बज रहे थे। रायचंद ग्रुप के मेन ऑफिस गेट के सामने एक बड़ी काली मर्सिडीज आकर रुकी। पास में ही सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उस मर्सिडीज के लिए गेट नहीं खोला। उस कार में मिस्टर रायचंद थे। कुछ देर उन्होंने वेट किया, फिर ड्राइवर को कुछ कहा तो उसने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन उसके बाद भी गेट नहीं खुला। आखिर में वो खुद उतरे, ब्लैक बिजनेस सूट में, घमंड भरी चाल, लाल चेहरा। मिस्टर रायचंद गुस्से से चिल्लाते हुए गेट की तरफ बढ़े। क्या हो रहा है? गेट क्यों बंद है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? इतनी देर से ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, उसके बावजूद तुम गेट नहीं खोल रहे? क्या तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं, या भूल गए कि ये किसकी गाड़ी है?
नहीं सर, ऐसा नहीं है। ड्राइवर उनका गुस्सा देखकर जरा हड़बड़ा गया।
मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैं मालिक हूं इस कंपनी का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी देर तक इंतजार करवाने की? अभी और इसी वक्त गेट खोलो, वरना तुम्हें उठवाकर यहां से बाहर निकलवा दूंगा। मिस्टर शेरगिल ने बेचारे गार्ड को बुरी तरह लताड़ा, लेकिन अब भी उसने गेट नहीं खोला। गार्ड ने सर झुकाया और पोलाइटली बोला,
सर सॉरी सर, लेकिन कायरव सर ने सख्ती से मना किया है। आपका एंट्री पास कैंसिल कर दिया गया है। हम अब आपको अंदर नहीं जाने दे सकते।
मिस्टर रायचंद को सदमा सा लगा। कायरव ने उन्हें अंदर जाने देने से मना किया? वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सके और गुस्से में गार्ड की यूनिफॉर्म का कॉलर पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहा है तू? कायरव ने मुझे यहां अंदर जाने देने से मना किया है? वो मेरा बेटा है, मैंने इस कंपनी को खड़ा किया है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? हट जा रास्ते से, वरना नौकरी से निकाल दूंगा।
मिस्टर रायचंद ने गार्ड को धकेल दिया। उसके कदम लड़खड़ाए और वो कुछ कदम पीछे चला गया। शायद गिर ही गया होता, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। गुस्से से बौखलाए मिस्टर रायचंद आगे बढ़े, लेकिन वो गार्ड फिर से उनके सामने उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया।
सॉरी सर, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। कायरव सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि आपको अंदर नहीं जाने देना है। लगता है तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है, इसीलिए दोबारा मेरा रास्ता रोकने की जुर्रत कर रहे हो।
मिस्टर रायचंद ने धधकती निगाहों से उसे घूरा। गार्ड ने सर झुका लिया।
सर, मैं मजदूर हूँ, कायरव सर के ऑर्डर्स हैं। अगर मैंने उनके ऑर्डर फॉलो नहीं किए, आपको अंदर जाने दिया, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बुलाओ उसे यहाँ, अभी और इसी वक्त कायरव को यहाँ बुलाओ। मैं भी देखता हूँ वो कैसे मुझे अंदर जाने से रोकता है।
मिस्टर रायचंद की दहाड़ वहाँ गूंजी। गुस्से से वो कांप से गए। बेचारा गार्ड भी थोड़ा डर गया। दूसरे गार्ड ने तुरंत ही किसी को फ़ोन किया। गुस्से से भड़के मिस्टर रायचंद गेट के सामने खड़े उन गार्ड्स को जलती निगाहों से घूर रहे थे। अपनी इस इंसल्ट पर गुस्से की शिद्दत से उनका चेहरा लाल हो गया था। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि गेट खुला और एक ब्लैक एसयूवी ठीक उनके सामने आकर रुकी। मिस्टर रायचंद देखते ही पहचान गए, वो कायरव की कार थी। गार्ड ने तुरंत दौड़कर जाकर पीछे का गेट खोला और अंदर से कायरव बाहर निकला। काला सूट, सख्त चेहरा, ठंडी निगाहें। एक हाथ जेब में डाले वो पूरे एटीट्यूड के साथ ठीक मिस्टर रायचंद के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ गुस्से का असर था और कुछ गर्मी थी। मिस्टर रायचंद का चेहरा पसीने से भीग गया था और कायरव को देखते ही भौंई खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। कायरव के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। कहिए, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? कायरव ने ठंडे लहजे में सवाल किया, साथ ही भौंई चढ़ाई। उसका ये आम सा अंदाज देखकर मिस्टर रायचंद का खून खौन उठा। उन्होंने गुस्से में जबड़े भींच लिए। तुमने इन्हें ऑर्डर दिया है कि मुझे अंदर ना जाने दे? बिना बात घुमाए मिस्टर रायचंद ने सीधे ही सवाल दागा। कायरव के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले। उसने शांत मगर गंभीर स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैंने ही इन्हें ये ऑर्डर दिया था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मिस्टर रायचंद गुस्से से चीखे। समझते क्या हो तुम खुद को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे मेरे ही कंपनी में घुसने से रोकने की?
सॉरी, बट अभी आपकी कंपनी नहीं रही।
कायरव अब भी जरूरत से ज्यादा शांत नजर आ रहा था। उसके शब्द सुनकर मिस्टर रायचंद की भौहें तन गईं। कहना क्या चाहते हो तुम? ये मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। मैंने इस कंपनी को अपनी पूरी जिंदगी दी है। इसे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी दिन रात की मेहनत लगी है। तुम्हें इस कंपनी का सीईओ भी मैंने ही बनाया था, लेकिन सीईओ बन जाने से तुम इस कंपनी के मालिक नहीं बन जाओगे। आज भी मैं 51% शेयर्स का मालिक हूँ। सारी पावर मेरे हाथों में है। अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से हटा सकता हूँ। इसीलिए मुझसे टकराने से पहले एक नहीं, 100 बार सोच लेना। अभी तुम जिस मुकाम पर हो वो मेरे नाम की वजह से हो। अगर मैंने अपना नाम तुम्हारे नाम के पीछे से हटा लिया तो पल में तुम सड़क पर आ जाओगे। आज जो भी तुम्हारे पास है वो सब तुमसे छिन जाएगा।
ओह रियली? क्या सच में आपको ऐसा लगता है?
कायरव तिरछा मुस्कुराया, एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया और आंखों में आंखें डालकर बोला, कायरव रायचंद नाम है मेरा। ये नाम भले मुझे आपसे मिला हो, लेकिन आज मेरी बिजनेस वर्ल्ड में जो पहचान है वो मेरी अपनी बनाई हुई है। मेरा नाम आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका है, और ये मेरी दिन रात की मेहनत का नतीजा है, आपका एहसान नहीं। कायरव ने पीछे पलटकर अपनी कंपनी की बिल्डिंग को देखा। ये कंपनी जिस पर आप अपना दावा कर रहे हैं, उसे शुरू आपने नहीं, दादाजी ने किया था, जिसे आपने संभाला जरूर, लेकिन आज ये कंपनी जिस मुकाम पर खड़ी है उसे वहां मैंने पहुंचाया है।
मैंने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत की है, इसीलिए इस कंपनी पर आपसे ज्यादा मेरा हक है और अब लीगली मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर रायचंद गुस्से से भड़के, लेकिन कायरफ पर रत्ती भर असर नहीं हुआ। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे कहा, बकवास नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। अब इस कंपनी पर आपका कोई हक नहीं बचा। मेजॉरिटी शेयर्स अब मेरे पास हैं, यहाँ तक कि आपके शेयर्स भी अब मेरे नाम ट्रांसफर हो चुके हैं, वो भी लीगली बोर्ड अप्रूवल के साथ, प्रॉपर डीड और रजिस्ट्रेशन के साथ। सारी पावर, साइनिंग अथॉरिटी, बैंक अकाउंट्स, डिसीजन मेकिंग अब मेरे हाथ में है। ये ऑफिस, ये बिल्डिंग, ये पूरा बिजनेस अब मेरा है। इतना ही नहीं, आपके नाम जितनी भी प्रॉपर्टी थी अब वो सब लीगली मेरे नाम ट्रांसफर हो चुकी है। जिस घर में अभी आप रह रहे हैं उसका ओनर भी अब मैं हूँ। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। कायरव ने ऐसा झटका दिया कि मिस्टर रायचंद शॉक्ड रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कायरव जो भी बोल रहा है वो सच है, ये झूठ है। उनके मुंह से बस यही चंद शब्द निकले, लेकिन इस वक्त उनकी आवाज बेहद कमजोर थी। उसमें वो तलखी और गुरूर नहीं था। शायद कहीं ना कहीं उनके दिल को भी एहसास था कि अब उनसे उनका सब कुछ छीना जा चुका है, बस वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अगर लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता ही था कि जब तक मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं सबूत अपने साथ लेकर आया था। कायरव ने पलट कर देखा, उसके ठीक पीछे नितिन खड़ा था। कायरव ने आंखों से कुछ इशारा किया और साथ ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। नितिन ने उसका इशारा समझते हुए तुरंत सर हिलाया और हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे कायरव ने उससे लिया और वापस मिस्टर रायचंद की तरफ घूम गया। लीजिए, पढ़िए, इसे पढ़कर आपका सारा शक दूर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेरा कहा एक एक शब्द सच था। मिस्टर रायचंद के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। कुछ देर वो उस फाइल को अजीब तरह से घूरते रहे, फिर उसे पकड़ा और जैसे जैसे उसे पढ़ते गए उनके एक्सप्रेशन बिगड़ते चले गए। साथ ही आंखों में हैरानी और कई सवाल भी झलक रहे थे। ये कैसे पॉसिबल है? ये साइन तो मेरे हैं, लेकिन मैंने तो कभी ऐसे किसी पेपर्स पर साइन नहीं किया। वो कुछ देर पेज के कॉर्नर पर मौजूद अपने साइन को घूरते रहे, फिर अचानक ही उन्हें वो दिन याद आया जब मीटिंग के बाद नितिन एक फाइल लेकर उनके पास आया था। उनका असिस्टेंट नहीं था और जल्दबाजी में उन्होंने उस पर साइन कर दिया था।
मिस्टर रायचंद को पल में सारा खेल समझ आ गया। गुस्से से भरी आंखों से उन्होंने कायरव को घूरा। टू बी कंटिन्यूड।